मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। इसके सेकेंड यूनिट का टॉपिक है भारतीय समाज का स्वरूप। इसके परंपरागत आधारों के अंतर्गत पाँचवा अध्याय है कर्म का सिद्धांत, जो निम्न प्रकार है। भूमिका: भारतीय विचारधारा पर जितना अधिक प्रभाव अकेले कर्म के सिद्धांत का है उतना किसी भी दूसरी अवधारणा या सिद्धांत का नहीं है। जब से उपनिषदों में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है तब से ही इसका भारतीय जीवन दर्शन और विचार परंपरा पर गहरा प्रभाव है और उस रूप में इसका प्रवेश भारतीय संस्कृति के सभी अंगों, दर्शन, साहित्य और कला में हुआ है। सभी वर्ग और सभी स्तर के भारतीय किसी न किसी रूप में कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तथा उसे अपनाते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ने भले ही वैदिक परंपरा के अनेक विषयों का विरोध किया तथा ब्राह्मणों की प्रभुता की उपेक्षा की, लेकिन फिर भी इन दोनों धर्मों ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। यह कर्म का ही सिद्धांत है जो तीन धर्मों हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म को कुछ विषयों में विचारों की एकता प्रदान करता है। मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मानव जीवन का चरम ध्येय माना गया है। उस मोक्ष का भी संबंध इस कर्म के सिद्धांत से अति घनिष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म सिद्धांत का विस्तार व प्रभाव भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अस्पष्टता है और प्रत्येक भारतीय इसके विषय में सचेत है। साधारण भारतीय समाज वेदांत की रहस्यपूर्ण बातों से भले ही परिचित न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से कर्म के सिद्धांत के इस आधारभूत तत्व से अवश्य परिचित हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है और कर्म के फल को टाला नहीं जा सकता है। भारतवासियों को गोस्वामी जी का यह कथन कंठस्थ है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। यदि धर्म इस बात को सूचित करता है कि क्या होना चाहिए तो कर्म क्या है कि व्याख्या करता है और उसी आधार पर इस बात की भी घोषणा करता है कि अगले जीवन में क्या होगा। ये दोनों ही तत्व विज्ञान की विशेषता है, इसलिए कुछ विद्वान कर्म के सिद्धांत को कर्म विज्ञान कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, कर्म की महिमा, सर्वव्यापकता, दुर्लघनीयता, शक्ति तथा प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जाति पर कर्म के प्रभाव को देखकर कोई कोई कर्म मीमांसक कर्म को ही ईश्वर रूप मानते हैं। परंतु इस संबंध में और कुछ विवेचना करने से पूर्व यह जान लेना उचित होगा कि कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। हेडिंग: कर्म का अर्थ। कर्म शब्द क्रि धातु से बना है। उसका अर्थ करना, व्यापार या हलचल होता है। इसी सामान्य अर्थ में गीता में इसका प्रयोग हुआ है। मनुष्य जो कुछ करता है, जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, सूंघना, देखना, बोलना, सुनना, ध्यान करना, आज्ञा निषेध करना, दान देना, ये सब गीता के अनुसार कर्म ही है। चाहे वो कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो, गीता के अनुसार जीना मरना भी कर्म ही है। अवसर आने पर यह भी विचार करना पड़ता है कि जीना या मरना, इन दो कर्मों में से किसको चुना जाए और कौन सा किया जाए। इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य कर्म अथवा विहित कर्म हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, सब चर अचर सृष्टि से अचेतन वस्तु के व्यापार में भी कर्म शब्द का ही उपयोग होता है। यह कर्म का व्यापक और सही अर्थ है। जहाँ तक कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का संबंध है, इस विषय में यह स्मरणीय है कि कर्म के अर्थ के अंतर्गत तीनों तत्वों का समावेश है। ये तत्व हैं कर्ता, पारिस्थितिक तथा प्रेरणा। कर्म किसी न किसी शक्ति द्वारा संपादित होता है और उस कार्य को करने वाला वह व्यक्ति कर्ता कहलाता है। कर्ता कर्म को शून्य या असमान नहीं करता। कर्म के संपादन के लिए एक परिस्थिति की आवश्यकता होती है। इतनी ही नहीं, प्रत्येक कर्म का कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है। स्वाभाविक अर्थ में कर्म कोई चमत्कार या जादुई अवधारणा नहीं है, जो कि बिना किसी कारण के ही घटित होती है। यह कारण ही उस कर्म की प्रेरणा है या प्रेरक शक्ति है। यदि मनुष्य सांस भी ले रहा है तो उसका भी एक कारण है। उसी प्रकार चुप रहने का भी एक कारण होता है। अतः स्पष्ट है कि कर्म के अंतर्गत कर्ता, परिस्थिति तथा प्रेरणा तीनों महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों के सम्मिलन से ही कर्म घटित होता है। कर्म की अवधारणा में इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिए। हेडिंग: कर्म का सिद्धांत। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, इस प्रकार है। कर्म के सिद्धांत को एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना गया है, और वह इस रूप में कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक कार्य कारण के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का अपना एक कारण होता है, और उस कारण से जो कुछ भी कार्य घटित होता है उसका अपना एक प्रभाव होता है। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति अध्ययन कार्य कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, चाहे वो माता पिता का दबाव हो या अपने आप में ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा हो। किसी भी अवस्था में अध्ययन कार्य का एक कारण है, और उस कारण के कारण संपादित कर्म का अपना एक प्रभाव या परिणाम होता है। जैसे अध्ययन कार्य से मस्तिष्क का विकास या ज्ञान का विस्तार होता है। संक्षेप में कार्य कारण का यही नियम है कि जो कि सर्वत्र समान रूप से क्रियाशील होता है। कर्म का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक कर्म का एक कारण होता है, और उस कारण के कारण होने वाले कर्म का अपना परिणाम या एक फल होता है। यही कर्म फल की अवधारणा है। अर्थात ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो सकता जिसका कोई फल न हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक कर्म में, चाहे वो कायिक हो या वाचिक हो या मानसिक हो, अपनी एक शक्ति होती है, और वह शक्ति कुछ परिणामों को उत्पन्न करती है। इसलिए प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए यदि एक व्यक्ति अच्छे फल की आशा करता है तो उसे कर्म भी अच्छे करने चाहिए। अतः मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, और वह इस अर्थ में कि अगर वह अच्छा कर्म करता है तो उसका भाग्य भी उसे अच्छा फल देगा, और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उन बुरे कर्मों के फलस्वरूप अपने लिए केवल दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करेगा। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि सिद्धांत कर्म के सिद्धांत के अनुसार एक बार आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं होता, और आगे भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अर्थात एक जन्म में व्यक्ति को कुछ भी कर्म करता है वह कर्म उसके मृत्यु अर्थात एक जीवन के अंत हो जाने के साथ ही नष्ट हो जाता है, अपितु उसके कर्म की प्रतिक्रिया उसके अगले जीवन में भी बनी रहती है। इस प्रकार व्यक्ति का वर्तमान भाग्य उन कर्मों का संचयी फल है जो कि उसने भूतकाल में या पिछले जन्म में किए थे। इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता है। गीता में कहा गया है कि कर्म योग मार्ग में एक जन्म सिद्धि न मिले तो क्या हुआ, कर्म व्यर्थ न जाकर अगले जन्म में उपयोगी होता है, और प्रत्येक जन्म में इसकी वृद्धि होती है एवं अंत में कभी न कभी सच्ची सदगति मिलती ही है। कर्म फल या कर्म के सिद्धांत के संबंध में एक बात और उल्लेखनीय है, और वह यह है कि कर्म का फल दो प्रकार का होता है, एक तो स्थूल फल और दूसरा भाव व विचार का फल या सूक्ष्म फल। इन दोनों प्रकार के कर्म फलों को साधारण उदाहरण की सहायता से सहज ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर से धन चोरी कर लाता है। चोरी से प्राप्त यह धन उसके कर्म का स्थूल फल है, पर चूंकि यह कर्म धर्मानुकूल या समाज द्वारा मान्य नहीं है, और चूंकि उस कार्य से दूसरे को हानि पहुंची है, इस कारण चोर के मन में इस प्रकार के कर्म विरोधी व नीति विरोधी कार्य करते समय जो अस्वस्थ भाव और विचार उत्पन्न होंगे उनकी प्रतिक्रिया भी अस्वस्थ और अशुभ ही होगी, और उस व्यक्ति को अपने उस कार्य से आंतरिक आनंद, शांति और चारित्रिक उन्नति या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के कर्मों का फल सूक्ष्म रूप में कुछ भी होता है, पर सूक्ष्म रूप में वो अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य को बनाए या बिगाड़ सकता है। कर्म फल को स्थूल रूप में देखने से हो सकता है कि वह सुखकर या दुखकर प्रतीत हो, पर सूक्ष्म रूप में विवेचना करने पर वह कर्म फल बिल्कुल विपरीत हो जाता है। इस संबंध में यह स्मरण रखना है कि जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, तब हम नियतिवाद या भाग्यवाद का समर्थन नहीं करते। कर्मवाद या कर्म का सिद्धांत और नियतिवाद या भाग्यवाद एक ही नहीं है। एक अर्थ में तो कर्मवाद भाग्यवाद का उल्टा रूप है। भाग्यवाद में इस बात पर बल दिया जाता है कि भाग्य या नियति ही सब कुछ है, और मनुष्य जो कुछ है या होने की आशा करता है वह सब कुछ उसके भाग्य या नियति पर निर्भर करता है। उसके जीवन में वही होगा जो कुछ उसके भाग्य में लिखा है। वह कुछ भी करे अपने उस भाग्य को या विधि को, विधान को नहीं बदल सकता। इस नियतिवाद या भाग्यवाद के कारण ही लोगों के में यह गलत धारणा पनप जाती है, क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ भाग्य के द्वारा ही निर्धारित होता है। इस कारण उसके अपने कर्मों का कोई महत्व नहीं है, इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी अवस्था को उन्नत करने के लिए आवश्यक प्रयत्न या परिश्रम करने के प्रति उदासीन हो जाता है और वह आलसी और निठल्ला बन जाता है। परंतु कर्म का सिद्धांत या कर्मवाद उसे ऐसा बनने नहीं देता। वह लोगों को यह नहीं सिखाता कि भाग्य ही सब कुछ है और भाग्य के भरोसे ही सबको बैठे रहना चाहिए। इसके विपरीत कर्मवाद का उपदेश है कि मनुष्य ही भाग्य का वास्तविक निर्माता है और इस निर्माण कार्य के लिए उसे निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और आवश्यक कर्मों को करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता है। कर्मों का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोशिश करना ही मानव का धर्म है। कर्म के सिद्धांत की मान्यता यह है कि जो जैसा बोएगा वह ऐसा ही काटेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान समय में व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है या कर रहा है उसी के अनुसार वह भविष्य के संबंध में निश्चित हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल उसे कर्म की प्रकृति के अनुरूप ही मिलेगा। अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दंड मिलकर ही रहेगा। इसलिए अपने अच्छे कर्मों द्वारा वह अपने बुरे भाग्य को अच्छा और बुरे कर्मों करके वह अपने अच्छे भाग्य को भी बुरा बना सकता है। भाग्य दैवीय शक्ति का द्योतक है। इस कारण कर्मों के द्वारा हम उस शक्ति को भी बदल सकते हैं। इस रूप में मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। उदाहरणार्थ यदि पिछले बुरे कर्मों के फलस्वरूप एक व्यक्ति का भाग्य बहुत ही बुरा बन गया और उस बुरे भाग्य को भी सत्कर्मों द्वारा अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि सत्कर्मों को करने से व्यक्ति में जिस उत्तम शक्ति का उदय होगा वह पिछले बुरे कर्मों के बुरे फल या प्रभावों को रोकने या घटाने में सहायक सिद्ध होगी। फलतः बुरा भाग्य भी कर्म बल के आधार पर एक अच्छा भाग्य बन सकता है। हेडिंग कर्म फल की अवधारणा निम्न प्रकार है। उपरोक्त आधार पर यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट होगा कि कर्म शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में कर्म के अंतर्गत होने वाले कार्य या क्रिया का बोध होता है, दूसरे अर्थ में कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका बोध होता है। इसी शक्ति के द्वारा कर्म फल उत्पन्न होता है। वस्तुतः कर्म का सिद्धांत इसी कर्म फल से संबंधित है। यह कर्म फल कैसे उत्पन्न होता है या कर्म के सिद्धांत की क्रियाशीलता का क्या रूप है, वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयत्न विद्वानों ने किया है। यह वैज्ञानिक आधार कार्य कारण नियम है। कार्य कारण का नियम भौतिक जगत का आधारभूत नियम है। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका कि कोई कारण न हो, न कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिसका कोई न कार्य न हो। एक विद्वान के अनुसार प्रकृति में कारण और कार्य का नियम सब लोकों में व्याप्त है। प्रत्येक कारण का कोई न कोई परिणाम अवश्य होगा। विज्ञान का नियम है कि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया समान बल से किंतु विपरीत दिशा में होती है। यह नियम सर्वत्र एक सा होता है। हमारे प्रत्येक कार्य में स्थूल कार्य के अतिरिक्त भाव तथा विचार की भी क्रिया होती है। प्रथम हम किसी कार्य के संबंध में सोचते हैं, तब वह विचार सोची हुई वस्तु पर पहुंचकर वहां क्रिया करता है। उस विचार के आते ही हमारे मन में वासना, देह में उसी प्रकार के भाव क्रोध, लोभ, मोह, माया, स्नेह आदि उत्पन्न होते हैं और बाहर निकलकर दूसरों पर वैसा ही प्रभाव डालते हैं। इतनी क्रिया सूक्ष्म रूप से हो चुकी पर स्थूल कर्म अपना कार्य स्थूल जगत में करता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया हमारी स्थूल देह में, वासना देह में, मनोमय कोष में होती है। यदि उछलने वाली रबर की गेंद हम जोर से सीधे धरती पर मारें तो उतने ही वेग से ऊपर उछलकर हमारे हाथ में उतनी ही शक्ति से लगेगी। यह साधारण क्रिया का स्थूल फल हुआ। इसके साथ साथ भाव और विचार का फल भी होता है। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्तियों ने दो उद्यान जनता के हितार्थ नगर पालिका को भेंट कर दिया। उनमें से एक के मन में केवल परोपकार का भाव था और दूसरे के मन में यह बात थी कि इस सेवा के कारण सरकार से मुझे अधिक पुरस्कार या उपाधि मिलेगी। ऐसी दशा में स्थूल कार्य का फल तो दोनों को समान मिलेगा, परंतु दोनों के भाव और विचार भिन्न होने के कारण उनके भावों और विचारों की प्रतिक्रिया दोनों के फलों में भेद कर देगी। जिसकी नियत स्वार्थपूर्ण है उसे उस दान के चित्त में आनंद, शांति और चारित्रिक उन्नति या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु दूसरे को अवश्य ही प्राप्त होगी। यही कर्म का सिद्धांत या कर्म फल की अवधारणा है, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य ही होता है और उस फल का परिणाम को टाला नहीं जा सकता। पत्थर से टक्कर हो और चोट न लगे, आग में हाथ पड़े और आग न हाथ न जले, पानी में कपड़ा गिरे और गीला न हो। यह अच्छे कर्मों या बुरे का फल और बुरे कर्मों का अच्छा फल यह हो नहीं सकता, क्योंकि कार्य कारण का नियम और निष्पक्ष नियम विश्व का संचालन कर रहा है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य स्वभावी है और साथ ही प्रत्येक फल नए कर्म का कारण भी। बीज वृक्ष को उत्पन्न करता है, वही वृक्ष फिर बीज को उत्पन्न करता है, वह बीज अगले वृक्ष को जन्म देता है। कर्म और फल का यह चक्र निरंतर रूप से चलता रहता है। हेडिंग, कर्म के सिद्धांत के अंतर्निहित तत्व। कर्म का सिद्धांत कुछ विश्वासों और विचारों पर आधारित है, जिन्हें कि इस सिद्धांत के अंतर्निहित तत्व भी कहा जा सकता है। ये तत्व निम्नलिखित हैं, जिनकी अलग अलग विवेचना कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए परम आवश्यक है। पहला, कर्म केवल भौतिक क्रिया ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत मानसिक, आध्यात्मिक और भावात्मक सभी प्रकार की क्रियाएं आती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि कर्म का संबंध स्थूल देह, वासना देह और मनोमय कोष से होता है, और इस कर्म का प्रतिफल हमें या तो इहलोक या परलोक में अवश्य ही मिलता है। दूसरा, कर्मवाद के अनुसार, जैसा कि सर्वश्री चटर्जी तथा दत्ता ने लिखा है, नैतिक उत्कर्ष अर्थात कर्मों के धर्म तथा अधर्म सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। इसके अनुसार कृत प्रणाश तथा अकृतभ्युपगम नहीं होता, अर्थात किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना किए हुए कर्म का फल भी नहीं मिलता। हमारे कर्मों के फल का कभी नाश नहीं होता और हमारे जीवन की घटनाएं हमारे अतीत के कर्मों के अनुसार ही घटित होती हैं। तीसरा, कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का चक्र अनंत है तथा मनुष्य को कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। इसी को कर्म विपाक कहते हैं। इस कर्म विपाक का पहला नियम यह है कि जहाँ एक बार कर्म का आरंभ हुआ कि फिर उसका चक्र या व्यापार आगे बराबर अखंड रूप से निरंतर चलता रहता है, और जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है तब भी यह कर्म बीज रूप से बना रहता है, और फिर जब सृष्टि का आरंभ होने लगता है तब उसी बीज से फिर पूर्ववत अंकुर फूटने लगते हैं। चौथा, इस प्रकार के कर्म का फल कभी नाश नहीं होता और कर्म का परिणाम कर्ता के चरित्र, प्रवृत्ति, विचार, भावनाओं आदि पर प्रभाव डालता है और उसके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है। जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है और मरने के बाद भी दूसरे जीवन में उसके साथ जाता है। आज कर्म का फल भोगना पड़ता है और कल का परसों। इस प्रकार कर्म का फल सदैव चलता रहता है। मनुस्मृति तथा महाभारत में तो कहा गया है कि इन कर्म फलों को न केवल हमें बल्कि कभी कभी हमारे नाम स्वरूप देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़कों और नातियों तक को भोगना पड़ता है। शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, पापम कर्मम कृतम किश्चित तस्मिन दृश्यते निरपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेवशु च निरपतस्। अर्थात हे राजा, यदि किसी आदमी को उसके पाप कर्मों का फल उस समय मिलता हुआ न दिख पड़े तथापि वह उसे ही नहीं किंतु उसके पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों तक को भोगना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में भी प्रायः हम लोग यह देखते हैं कि भ्रष्टाचारी और कुकर्मों में रत पिता का एक ही पुत्र मात्र मर जाता है या उसके घर में पुत्र जिंदा ही नहीं रहते। इसी प्रकार कुछ संतानें रोगों का पिटारा साथ लेकर ही पैदा होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि उनके जन्म लेते ही उस परिवार का सुख और ऐश्वर्य दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। इस सब की व्याख्या केवल कर्मवाद के आधार पर ही संभव है और बहुतों का मत है कि यही कर्मवाद की सच्चाई का प्रमाण भी है। यह कहा जाता है कि मनुष्य को उसके कर्म का क्या फल मिलेगा यह भगवान के द्वारा ही निश्चित किया जाता है, तथापि वेद शास्त्र का सिद्धांत यह है कि वह फल प्रत्येक व्यक्ति के कर्म की अच्छाई बुराई के अनुसार ही निश्चित होता है। यह तो हो नहीं सकता कि बुरे कर्म का फल अच्छा हो और अच्छे कर्म का फल बुरा हो, इसलिए परमेश्वर इस संबंध में तटस्थ ही रहते हैं। उनका तो निष्पक्ष न्याय होता है। गीता में स्पष्ट ही कहा गया है कि सम्मूहम सर्वभूतेषु न मे देशियोस्ति न प्रियः, अर्थात ईश्वर सबके लिए समान या एक सा है, उन्हें न कोई अप्रिय है और न कोई प्यारा। साथ ही ना दंते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभो, अर्थात परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है और न पुण्य को। पाप या पुण्य को तो व्यक्ति विशेष को स्वयं ही ग्रहण करना पड़ता है और तदनुसार फल भी भोगने पड़ते हैं। कर्म के स्वभाव का चक्र चल रहा है जिससे प्राणी मात्र को अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पाप और पुण्य का विचार अति प्राचीन है और इस कर्म के अर्थ में कि कर्म फल के प्राचीनतम सिद्धांत में यह बतलाया गया है कि इस जीवन में जो कुछ भी हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमें परलोक में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म तराजू के पलड़ों पर रखे जाते हैं, उनमें से जो नीचे झुक जाता है उसी के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग या नरक मिलता है। यह विचार हम ऋग्वेद में भी पाते हैं। स्वर्ग पुण्य आत्माओं का संसार है जहाँ पर कि उन्हें लोगों का प्रवेश संभव है जो कि अच्छे कर्म करते हैं। अन्य लोग अपने अपने बुरे कर्म या पापों के अनुसार थोड़े या अधिक समय तक पितृलोक से दूर जाते हैं। स्वर्ग का मार्ग सरल नहीं है और उस मार्ग पर केवल वही चल सकता है जिनके कर्म अच्छे हैं। आदित्यगण स्वर्ग को लक्ष्य बनाने वालों को पीछे ढकेलते हैं। मृत इस संसार को छोड़कर दो अग्नियों के बीच से गुजरते हैं। ये अग्नियां बुरे कर्म करने वाले दुष्टों को जला देते हैं परंतु सत्कर्म करने वालों को और भले लोगों को आगे जाने देते हैं। पांचवा, कर्म के सिद्धांत का एक और अंतर्निहित तत्व यह है कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म वास्तव में होता है। ये दोनों ही विचार कर्म के फल से संबंधित हैं। इस जन्म में हम जो कुछ भी हैं हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही प्रत्यक्ष फल है। यह विचार इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य के वर्तमान जन्म से भी पूर्व आत्मा की स्थिति थी। इसी प्रकार जो कुछ हम इस जन्म में कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारा भविष्य का निर्माण निर्धारित होगा। यह विचार हमें बाध्य करता है कि हम वर्तमान जीवन से भी आगे आत्मा की स्थिति को स्वीकार करें। इतना ही नहीं, हमारे कर्मों के फल का भी नाश नहीं होता। इस सिद्धांत के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फल एक ही जन्म में समाप्त नहीं हो पाते, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए एक से अधिक जन्मों की आवश्यकता होती है। यही पुनर्जन्म की अवधारणा है। जातक ग्रंथों में कहा गया है कि कर्म के अनुसार मृत्यु घड़ी में ही अगले जन्म की जन्म कुंडली तैयार होती है। इस प्रकार जीव का पुनर्जन्म मोक्ष की प्राप्ति न होने पर अवश्यंभावी है और उसका हेतु है कर्म। छठा, कर्म के सिद्धांत का एक अंतर्निहित तत्व यह भी है कि यह जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित समस्त विषयों को कर्म के आधार पर समझने का प्रयत्न करता है। जीवन की परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान इसलिए नहीं है कि प्रत्येक के कर्म भी समान नहीं है। कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के वर्तमान जन्म में वह जिस परिस्थिति में है कर्म की कसौटी पर उसे कसकर उसी योग्य बनाया गया है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों की जीवन परिस्थिति या पद का निर्धारण जिस आधार पर किया गया उसका भी प्रत्यक्ष संबंध इसी कर्म के सिद्धांत से ही था। और कुछ विद्वानों का कथन है कि वर्ण व्यवस्था को स्थिर रखने में कर्म की धारणा का महत्वपूर्ण योगदान इस अर्थ में रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन की निम्नतम परिस्थिति वो पद को भी अपने ही अतीत कर्मों का स्वाभाविक फल मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेता है। सातवां, कर्म के सिद्धांत का एक अन्य अंतर्निहित तत्व यह है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जैसा कि डॉक्टर गोपालन ने लिखा है, यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों का दो प्रकार से परिणाम भोगना पड़ता है। मनुष्य के बाद कर्मों की अच्छाई और बुराई के अनुसार उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग के सुख या नरक की यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। इस अवधि की समाप्ति के बाद कर्मों के अनुसार ही उसे देहांतर प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म में सुख और दुख, समृद्धि और दरिद्रता सभी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों में अच्छे और बुरे कार्यों के प्रति जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। उनमें जन्म से ही विशेष गुण, क्षमता और रुचि प्राप्त होती है। ये अंतर या समानताएं पूर्व जन्म में कर्मों के कारण हैं जिनके फल कर्ता के साथ जुड़े जाते हैं और पूर्व जन्म के प्रकट होने पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म की धारणा मनुष्य के कम तीन जन्मों को एक श्रृंखला में आबद्ध करती है। पूर्व जन्म के कर्म कर्मानुसार वर्तमान जीवन और वर्तमान जीवन के कर्मानुसार भविष्य के जीवन का निर्धारण, यह चक्र कर्म के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है। आठवां, अतः कर्म के सिद्धांत की सामान्य मान्यता यह है कि कर्म चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके परिणाम या फल से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। उसका परिणाम भोगने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वहाँ इस सिद्धांत के अंतर्गत बुरे कर्मों के परिणामों को सत्कर्मों द्वारा प्रतिबंधित करने या सुधारने का विचार भी अस्पष्टतः निहित है। सुधारने के उपायों के संबंध में अलग अलग शास्त्रकारों ने विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है। गौतम कहते हैं कि वेदों का अध्ययन, आत्मसंयम, बलि, उपवास तथा दान आदि देना पापों से निवृत्ति होने के साधन हैं। वशिष्ठ के अनुसार अपने शरीर को कष्ट देने, वेद मंत्रों का जप करने, धर्मानुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने, दान देने तथा प्राणायाम आदि करने से पापी व्यक्ति बुरे कर्मों के परिणाम को रोक सकता है। मनु ने भी सुझाव दिया है कि अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करने, आत्मसंयम करने, वैदिक ग्रंथों के परिणाम से छुटकारा पाया जा सकता। पर यदि कोई व्यक्ति आत्मसंयम का पालन नहीं कर सकता या वैदिक ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकता, तो वह दानशीलता के द्वारा अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है।